तो इतना कुछ पता है क्या, मेरे को लगता है कि आपका पढ़ाई वाला बैकग्राउंड था, आईटी में आप पढ़े हो, उसके बाद आईटी में उसको पढ़ा रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्ड। तो आईटी की जो पढ़ाई थी उसने मदद किया आपको कि यार इसमें भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली हाथ आप नहीं गए। बट आपको ये नहीं लगा कि आप ऑप्शन सेलिंग, जो कि सबसे सबसे महंगी फॉर्मेट ऑफ, सबसे महंगा तरीका है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का, ऑप्शन सेलिंग, इससे महंगा कुछ नहीं है। आई मीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी है पीएमएस, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और ट्रेडिंग करना है अगर आप, तो सबसे महंगा ये है। तो आपको नहीं लगा कि यार मैं पहले छोटा कैपिटल से जाता हूँ, कुछ छोटी चीज़ करके देखता हूँ, फिर इसमें मैं जाऊँगा, ऑप्शन सेलिंग में ही क्यों आए?
देखिए, इंजीनियरिंग करने का भैया एक बेनिफिट ये है कि आपको मैथ आती है, और जिसको मैथ आती है और 9th 10th या 11th 12th में हम लोग IIT की तैयारी में पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी, तो सीधी बात ये समझ में आती है भैया कि गेम वही खेलो जहाँ प्रोबेबिलिटी अपनी साइड हो। क्योंकि चाहे कैपिटल छोटा हो चाहे कैपिटल बड़ा हो, अगर आप बात समझो मेरी, आप जो बोल रहे हो छोटा कैपिटल ऑप्शन सेलिंग, बड़ा कैपिटल चाहिए, बट अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो मैं आयरन कॉन्डोर करता था या स्ट्रैडल करता था, वो सारा काम 50 से 60 हज़ार में होता है मार्जिन बाई करके, हेज बाई करके। तो 50 60 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज़ मतलब नहीं है, लेकिन बात है कि प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई दाव वही लगाओ जहाँ आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो, तभी आप जीतोगे। तो सीधा मुद्दा यही है। तो इस मामले में मैं वही बोलता हूँ कि लकी हूँ कि ऑप्शन सेलिंग पे ही दिमाग गया, भले ही रिस्क बहुत ज़्यादा है ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैं 10 बार जीतूंगा 2 बार हारूंगा कोई बात नहीं, लेकिन 10 बार जीतूंगा तो ज़रूर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीतना है।
आपको अपना प्रॉपर सेटअप बनाने में कितना समय गया कि यार ये मेरा सेटअप बन गया है, इसमें पोजीशन लूंगा अपनी?
सेटअप तो अभी भी बन ही रहा है, सेटअप कभी बन के ख़त्म नहीं होता, लेकिन बात यह है कि उस टाइम भैया जैसे हालात बदलते हैं ना, आप समझो इस बात को। मैं पहले घर में था, तो जब मैं घर पे था तो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं मॉनिटर को देख सकता हूँ, अब मैं ऑफलाइन टीचिंग में आ गया हूँ तो मॉनिटर मेरे हिस्से से कट गया है, इस बात को समझिए आप। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको अपने सेटअप को ऐसा करना रहना पड़ेगा जो आपकी डे टू डे लाइफ को ज़्यादा परेशान ना करे। तो पहले मैंने दो दो स्क्रीन लगा रखी थी, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल चार्ट्स देख रहा हूँ, मतलब क्या नहीं करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे शिफ्ट करना पड़ा, मजबूरी, जॉब ने मजबूरी दिला दी। अब 8.5 घंटे का अपना ऑफिस वर्किंग आवर होता है, तो आप वहाँ दिन भर क्लास में पढ़ाते पढ़ाते फोन तो नहीं निकालोगे ना, हाँ भाई रिलायंस का शेयर बढ़ गया, थोड़ा 2 मिनट बच्चों रुक जाओ मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, ये चीज़ तो संभव नहीं है। तो फिर अभी भी सेटअप हो रहा है, लेकिन मैं पिछले ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजी पे, मैं 2021 में जब मैंने बड़ा फंड अपना इन्फ्यूज़ किया था तब से मैं काम कर रहा हूँ, लगभग 2 साल हो गए हैं उसके, 2.5 साल होने को आए हैं।
आप अपने फंड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके का कैपिटल साइज है आपका, और ऑप्शन सेलिंग में उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, एंड व्हाट इज़ योर मंथली एक्सपेक्टेशन अपनी सेटअप से?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर बिल्कुल वैसे बात करना चाहूँगा। देखिए, जो कैपिटल है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि मैंने उसमें से कुछ हिस्सा, मैं स्टॉक पिकिंग एक आम आदमी के लिए बहुत ख़राब बात है, मतलब एक आम आदमी अच्छे स्टॉक्स कौन से होंगे, कौन से हमको पैसा बनाएंगे नहीं चुन सकता है, मतलब संभावना नहीं है इसकी। मैं इसको मानता हूँ कि मैं डफर आदमी हूँ, जितना अपने आपको गधा मानोगे उतना आप सीधा काम करोगे, सीधी बात है, और जितना अपने आपको चलांग सोचोगे आप डाइवर्सीफाई करोगे, मतलब आपका दिमाग उतना दौड़ेगा, वो नहीं करना है। तो मैंने सीधी बात की, स्टॉक मैंने पिकिंग कभी नहीं की, मैंने सारे 20 में इन्वेस्ट किए, निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया, जूनियर 20 हो गया, IT 20 हो गया, FMCG 20 हो गया, ऑटो 20 हो गया, फार्मा 20 हो गया, तो सारे सेक्टर के मैंने 20 पकड़ लिए, स्टॉक को छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मैंने भारत बॉन्ड का ये आया था इशू आया था 2022 में, 2022 के इस टाइम 23 में शायद स्टार्टिंग में भारत बॉन्ड का इशू आया था, मैंने उसमें पैसे डाल दिए। उसके बाद फिर जो आपका लिक्विड 20 वाला, क्योंकि मुझे कैश कंपोनेंट भी तो रखना है और मुझे इक्विटी कंपोनेंट भी रखना, तभी मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा, 50-50% का मार्जिन का नियम है, तो लिक्विड 20 में मैंने इन्वेस्ट किया बिकॉज इट इज़ काउंटेड एज कैश कंपोनेंट। तो मैंने अपना इक्विटी वाला पार्ट जो है वो मैंने सिर्फ 20 में इन्वेस्ट किया है, अलग अलग सेक्टर के 20 पकड़ लिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, और लिक्विड वाले पार्ट के लिए मैंने जो है आपका पकड़ लिया है लिक्विड 20, लिक्विड कंपोनेंट के लिए। और गिल्ट फंड में अभी मैं आगे इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि गिल्ट फंड में जो काउंट होता है वो एज अ लिक्विड कंपोनेंट ही काउंट होता है, कैश कंपोनेंट काउंट होता है।
जो थोड़े नए लोग हैं उनको आप ये 20 का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं?
और कुछ पैसा SGB में डाला हुआ है। हाँ बिल्कुल, जैसे 20 इज बेसिकली एक एक म्यूचुअल फंड का ही टाइम है, बट ये इंडेक्स फंड है, इट इज़ अ इंडेक्स फंड। तो मेन मुद्दा सिर्फ ये होता है कि एक आम आदमी के पास इतना ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतनी बुद्धि है कि वो अच्छे स्टॉक्स खुद पिकअप करके उसे पैसा लगा सके। तो अगर मैं बात करूँ तो अपने इंडिया में भैया 3,000 कंपनीज है, 3,200 पता नहीं कितनी कंपनीज है, मुझे तो अगर टॉप कंपनी में पैसा लगाया तो निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 कंपनी हो गई। तो उन 50 कंपनी का जो निफ्टी 50 का जैसे प्राइस चल रहा है अभी 22,000 21,700 आज क्लोज हुआ अपना, तो जो भी उसका प्राइस चल रहा है वो उन 50 स्टॉक से डिराइव हो रहा है उनके परसेंटेज वाइज। अब जैसे मान लो कि रिलायंस का एक स्टॉक जो चल रहा है अभी 2600 का चल रहा है, 2500 का चल रहा है, HDFC बैंक का स्टॉक चल रहा है अपना 1650 1600 पे, तो मैं अगर हर एक का एक एक स्टॉक खरीदूँ तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुझे पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। तो जैसे भैया असीम भैया आप मान लो फंड मैनेजर हो, तो आपने कहा कि ये 100 लोगों से आपने 1000-1000 रुपये ले लिए, ठीक, और आपने उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी के 50 कंपनियों में, टॉप 50 कंपनियों में, और जो भी स्टॉक्स आपने इकट्ठे किए आपने अपनी कॉपी में लिख लिया और आपने सबको उनके पैसे के प्रोपोर्शन में यूनिट्स बांट दी। तो दिस इज़ लाइक इंडेक्स फंड। इसमें मेन बेनिफिट ये है ना कि आपका एक्सपेंस रेशियो कुछ भी नहीं होता टोटल एक्सपेंस, क्योंकि फंड मैनेजर का काम क्या, आप हुए मेरे फंड मैनेजर, तो फंड मैनेजर का काम क्या, रिसर्च करना, स्टॉक्स खोजना, इसका आप पैसा खाओगे। लेकिन इंडेक्स फंड में आपको तो बुद्धि ही नहीं लगानी है, क्योंकि आप तो टॉप 50 कंपनी सबको ही जानता है, दुनिया में हर कोई जानता है कि निफ्टी की टॉप 50 कंपनी कौन है। तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर को पैसा बहुत कम जाता है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग रन पे इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना होराइजन बहुत लंबा है 10 से 15 साल तक का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उन्हीं को हम इन्वेस्टिंग 20 का यूज करते
हैं। लार्ज कैप फंड्स हैं सारे, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ऐसे कोई स्टॉक्स हैं जो मिड कैप या स्मॉल कैप के हों?
निफ्टी 20 जो है वो नहीं, हाँ बिल्कुल, निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स को ट्रैक करेगा। फिर आता है जूनियर 20, जैसे निफ्टी 50 होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है जिसको निफ्टी 100 बोलते हैं, तो जूनियर 20 आपका नेक्स्ट 50 को ट्रैक करेगा। FMCG 20 FMCG की टॉप को ट्रैक करेगा। उसके बाद IT 20 IT सेक्टर के जो इंडेक्स है, क्योंकि IT का इंडेक्स भी है, उसमें जो जो स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है उस रेशियो में उसको ट्रैक करेगा। वैसे मिड कैप का भी है, मिड कैप 150 20, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो भी है अवेलेबल, बिल्कुल है।
ओके, माय क्वेश्चन
सबके लिए है।
मेरा क्वेश्चन इसलिए था ये क्योंकि शायद निफ्टी 50 या निफ्टी 20 में इतनी मूवमेंट आपको दिखाई ना दे, वो थोड़े सेफ होंगे, सेफ इन्वेस्टमेंट है वो, बट ज़्यादा रिटर्न आने के चांसेस कम होंगे बिकॉज वो बड़े बड़े स्टॉक्स बहुत धीरे धीरे हिलते हैं।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो पैसा बना के देगा। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, मुझे लगता था कि 1 रुपए का स्टॉक 2 रुपए में जल्दी हो जाएगा।
नहीं 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 नहीं,
1000 का स्टॉक 2000 में क्यों नहीं, कब होगा, बहुत टाइम लगेगा।
वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे रिलायंस का स्टॉक है वो 2500 का है, वो 2700 का भी होता है, वो 5000 का भी होता है, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 10 साल में या 5 साल में 5000 होता है, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि मिड कैप कंपनी जो होती हैं उसमें रिलेटिवली ज़्यादा चांस होते हैं मूवमेंट करने के इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मोनेटरी वैल्यू। महंगा स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि वो
रिटर्न कम देगा ज़्यादा।
एनीवे, तो आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट है वो कितना कैपिटल है जो 20 में है?
20 में अराउंड 20 लाख के आसपास होगा।
ओके ओके, एंड यू यूज इट फॉर योर ऑप्शन सेलिंग एज वेल, आप प्लेज करते हैं इन सबको?
वो पूरा प्लेज्ड है, पूरा मेरा मतलब पूरा मेरा, हाँ सब प्लेज्ड है सब।
तो आपने ये सोच रखा कि मेजर पैसा जो आपने बनाना है वो आपने ऑप्शन सेलिंग से ही बनाना है?
भैया इसमें ना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, है कि नहीं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि अगर मेरा पूरा पैसा प्लेज है तो मेरा कैश कंपोनेंट कम है, कैश कंपोनेंट कम है तो जो मेरा पैसा इन्वेस्टेड है वो मुझे ऑलरेडी एक अमाउंट दे रहा है रिटर्न में, इस बात को आप मानते हैं। अब सपोज मैं अपने 20 की ही बात करता हूँ, निफ्टी 20 का ऑन एन एवरेज मान लीजिए 10% का रिटर्न है और मेरा ईयरली टारगेट जो है वो है 18 से 24%, तो मुझे अपने बाकी पैसे पे सिर्फ 8% बनाने हैं, इस बात को समझिए, और 8% मुझे पूरे साल में बनाना है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन कितना कम हो गया। तो इस ये चीज़ अपने को हेल्प करती है कि अपन कभी भी रिस्की ट्रेड ना ले, सीधा फंडा है भाई, अगर मार्केट से अपना पैसा बचा लोगे संभाल लोगे तो पैसा तो बन जाएगा। तो आपने पहले ही इन्वेस्ट कर रखा है, एक ऑलरेडी किसी कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने उसको प्लेज किया हुआ है, तो वो इक्विटी ऊपर नीचे होगा तो उसका रिटर्न तो आ ही रहा है, तो आपको जो खुद से रिटर्न जनरेट करना है वो बहुत कम हो जाता है, तो आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है, माइंड फ्री होकर काम करता है।
आपका टोटल कैपिटल आपने बताया अराउंड 72 लाख है, तो इफ यू आर जनरेटिंग अराउंड लेट्स से 20%,
हाँ 72 लाख का पूरा कॉर्पस हो गया,
तो अगर आप जनरेट कर रहे हो 20% ROI ऑन ईयरली बेसिस, तो समवेयर अराउंड 14-15 लाख आपका बन रहा है ये, एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये पैसा आप निकाल नहीं रहे हो।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मार्केट से पैसा निकालना छोड़ दिया है 2 साल से।